एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम ग्रंथ सार में एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि कहानियों का एक पूरा ब्रह्मांड है। हम बात कर रहे हैं डेविड मिचेल के 2004 में आए उपन्यास क्लाउड एटलस की।
क्लाउड एटलस,
हाँ।
ये वो किताब है जिसे पढ़ना किसी भूल भुलैया में उतरने जैसा है।
बिल्कुल,
हर मोड़ पर एक नई दुनिया, एक नया समय और एक नई पहेली आपका इंतजार कर रही होती है।
बिल्कुल सही कहा।
मुझे हमेशा लगता है कि ये उपन्यास एक रूसी गुड़िया की तरह है, वो मात्रियोष्का डॉल।
हाँ।
आप एक खोलते हैं तो अंदर से दूसरी निकलती है, फिर तीसरी।
हाँ।
छह अलग अलग कहानियां एक दूसरे के अंदर परत दर परत छिपी हुई हैं।
हाँ।
और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक साहित्यिक मतलब कलाबाजी नहीं है, ये उपन्यास के सबसे गहरे संदेश को सामने लाने का एक तरीका है।
और वो गहरा संदेश क्या है, यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हम इस उपन्यास की अनूठी बनावट को परत दर परत खोलेंगे, सदियों में फैली इन छह कहानियों के धागों को जोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आत्मा, एक विचार समय के पार यात्रा करता है।
हाँ, ये मानवता, शक्ति, लालच और आजादी की एक ऐसी दास्तान है जो 19वीं सदी के समंदर से शुरू होती है और एक बहुत दूर के सर्वनाश के बाद के भविष्य के खंडहरों तक जाती है।
और ये दिखाती है कि कैसे इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन हर बार एक नए अंदाज में। शिकारी और शिकार का खेल हर युग में खेला जाता है, बस बस चेहरे और हथियार बदल जाते हैं।
बिल्कुल।
तो चलिए इसी खेल को समझने के लिए सबसे पहले इसकी बनावट को ही समझ लेते हैं। ये ABCDEFEDCBA जैसा एक सममित पैटर्न है।
सिमेट्रिकल।
इसका मतलब हम पहली कहानी से शुरू करते हैं, वो बीच में रुक जाती है, फिर हम दूसरी कहानी में पहुंच जाते हैं और ऐसा छठी कहानी तक चलता है।
हाँ, और छठी कहानी पूरी होती है और फिर हम उल्टे क्रम में लौटते हुए हर अधूरी कहानी को पूरा करते हैं। ये शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है ना?
हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका एक गहरा मतलब है। ये सिर्फ कहानी कहने का एक अनोखा तरीका तो नहीं है?
नहीं, ये असल में जीवन के अनुभव को दर्शाता है। हमें अक्सर घटनाओं का पूरा मतलब तुरंत समझ नहीं आता, किसी फैसले का असर सालों बाद दिखता है। ये संरचना पाठक को वही महसूस कराती है।
अच्छा, मतलब ये हमें दिखाती है कि कैसे अतीत भविष्य को बनाता है और कैसे भविष्य में जाकर हमें अपने अतीत का असली मतलब समझ आता है। हर कहानी पिछली कहानी की एक गूंज है और आने वाली कहानी की एक आहट।
क्या बात है, बिल्कुल यही। तो चलिए इन गूंज और आहटों के सफर पर निकलते हैं।
इन छह कहानियों की यात्रा में एक और दिलचस्प धागा है,
वो धूमकेतु के आकार का जन्मचिन्ह। हाँ बिल्कुल, हर मुख्य पात्र के शरीर पर एक कॉमेट शेप्ड बर्थमार्क है। ये एक तरह का आध्यात्मिक डीएनए है जो बताता है कि ये सब शायद एक ही आत्मा के अलग अलग अवतार हैं। तो पहली कड़ी है एडम ईविंग।
ठीक है।
कहानी 1849 में प्रशांत महासागर के द्वीपों पर शुरू होती है। एडम ईविंग एक भोले भाले आदर्शवादी अमेरिकी वकील है जो अपनी समुद्री यात्रा की एक डायरी लिख रहे हैं।
तो एक समुद्री यात्रा का वृत्तांत है
शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन जल्द ही ये उपनिवेशवाद की क्रूरता का दस्तावेज बन जाता है। ईविंग अपनी आंखों से गुलामों पर होते अत्याचार देखते हैं और उनका दिल पिघल जाता है। इसी बीच उनकी दोस्ती एक धोखेबाज डॉक्टर हेनरी गूज से होती है जो उन्हें एक दुर्लभ परजीवी का इलाज करने के बहाने धीरे धीरे जहर दे रहा है।
ओ, क्यों?
ताकि उनका सोना चुरा सके। कहानी उस मोड़ पर रुक जाती है जहां ईविंग लगभग मरणासन्न है, अपने कैबिन में लाचार पड़े हैं।
बहुत सीधा और शारीरिक है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है।
हाँ, यहाँ से ये शोषण कैसे अपना रूप बदलता है ये अगली कहानी में दिखता है। ये हमें लगभग 80 साल आगे 1936 के बेल्जियम में ले जाता है।
और यहाँ?
यहाँ शोषण शारीरिक से ज्यादा मानसिक और कलात्मक हो जाता है। रॉबर्ट फ्रोबिशर एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेकिन बदनाम और कंगाल संगीतकार है। वो अपने प्रेमी रूफस सिक्स स्मिथ को खत लिख रहा है जो उसकी कहानी का माध्यम है। पैसों की तंगी से परेशान होकर वो एक बूढ़े और मशहूर संगीतकार विवियन आयर्स के यहाँ सहायक बनकर काम करने लगता है।
अच्छा।
और वहीं उसे कबाड़ में एडम ईविंग की आधी अधूरी डायरी मिलती है।
एक मिनट, तो मतलब एक सदी पहले लिखी गई डायरी समंदर पार करके अब एक संगीतकार के हाथों में है, यही से कनेक्शन बनना शुरू होता है।
बिल्कुल, वो उस डायरी को पढ़कर बहुत प्रभावित होता है और आयर्स की मदद करते हुए अपनी सबसे महान कृति क्लाउड एटलस सेक्सेट की रचना करता है।
क्लाउड एटलस सेक्सेट?
हाँ,
मतलब संगीत का एक टुकड़ा जिसमें 6 हिस्से हैं।
हाँ, 6 अलग अलग वाद्य यंत्र हैं जो कभी एक साथ बजते हैं, कभी एक दूसरे की धुन को काटते हैं, ठीक उपन्यास की संरचना की तरह।
कमाल है।
लेकिन जैसे ही उसकी रचना पूरी होने वाली होती है, बूढ़ा संगीतकार आयर्स उसे चुराने की धमकी देता है। वो कहता है, ये तुमने मेरे प्रभाव में रहकर बनाया है, इसलिए ये मेरा है। कहानी उस तनाव भरे पल में रुक जाती है जब फ्रोबिशर को एहसास होता है कि वो एक रचनात्मक जाल में फंस चुका है।
तो यहाँ शोषण का रूप बदल गया।
हाँ,
अब ये किसी की कला, किसी की आत्मा को चुराने की कोशिश है, और फ्रोबिशर का संगीत खुद उपन्यास का एक रूपक बन जाता है।
हाँ, ये कला और शोषण के बीच का एक बहुत ही जटिल रिश्ता दिखाता है। उपन्यास शायद यही सवाल उठा रहा है कि क्या महान कला हमेशा किसी न किसी तरह के दर्द या शोषण से ही पैदा होती है।
तो फ्रोबिशर के खतों से ये कहानी कहाँ पहुँचती है?
अब हम 40 साल और आगे 1973 के कैलिफोर्निया पहुँचते हैं। कहानी का अंदाज फिर बदल जाता है। अब ये एक जासूसी थ्रिलर है।
अरे वाह।
लुइसा रे एक तेज तर्रार पत्रकार है जो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में चल रही धांधली की जांच कर रही है। उसे पता चलता है कि प्लांट सुरक्षित नहीं है और कॉरपोरेट अधिकारी ये राज दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
और यहाँ कनेक्शन कैसे जुड़ता है?
उसकी मुलाकात एक बूढ़े वैज्ञानिक से होती है जिसका नाम है रूफस सिक्समिथ।
सिक्समिथ, वही सिक्समिथ जिसे फ्रोबिशर खत लिखता था?
हाँ, वही। अब वो बूढ़े हो चुके हैं। सिक्समिथ उसे फ्रोबिशर के खत देता है और लुइसा उन हतों को पढ़ती है और क्लाउड एटलस सेक्सेट संगीत को सुनती है। उसे उस संगीत से एक अजीब सा, अनजाना सा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे उसने ये धुन पहले भी सुनी हो।
और उसकी कहानी कहाँ रुकती है?
ठीक उस वक्त जब कॉरपोरेशन का भेजा एक हत्यारा उसकी कार को एक पुल से नीचे गहरे पानी में धकेल देता है।
तो अब शोषण का दायरा और बड़ा हो गया है। एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरी कॉरपोरेट व्यवस्था का शोषण, एक अकेली औरत की पूरे सिस्टम के खिलाफ जंग।
तो अब तक हमने एक डायरी देखी, फिर खत, और अब ये कहानी एक पांडुलिपि के रूप में आगे बढ़ती है, सही?
बिल्कुल। अब हम 2000 के दशक में समकालीन लंदन में हैं और कहानी का मिजाज फिर पूरी तरह बदल जाता है। ये एक कॉमेडी है।
कॉमेडी?
हाँ, एक मजेदार फार्स। टिमोथी कैवेंडिश एक 65 साल का बदकिस्मत प्रकाशक है जो कुछ गुंडों से बचने के लिए भाग रहा है। उसका चालाक भाई उसे मदद के बहाने एक नर्सिंग होम में बंद करवा देता है जो असल में कैदखाना है।
ओह, और उसे लुइसा रे की कहानी कैसे मिलती है?
उसे ये कहानी एक लेखक की पांडुलिपि के रूप में मिलती है। और मजे की बात यह है कि वो उसे बस एक मसालेदार जासूसी कहानी समझकर छापने से मना करने की सोचता है।
ये तो कमाल की विडंबना है। एक प्रकाशक जो ऐसी कहानियों को गंभीरता से नहीं लेता, वो खुद वैसे ही एक भागने की कहानी में फंस जाता है। यहाँ शोषण का रूप क्या है? यहाँ शोषण बहुत सूक्ष्म है। ये किसी की आज़ादी, किसी के आत्मसम्मान को छीन लेने का शोषण है। नर्सिंग होम भी नर्सें बुजुर्गों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करती हैं। उनकी मर्जी की कोई कीमत नहीं। कहानी उस वक्त रुकती है जब वो कुछ और कैदियों के साथ मिलकर उस नर्सिंग होम से भागने का एक बड़ा ही मजेदार प्लान बनाना शुरू करता है।
और कैवेंडिश की इस भागने की कहानी को भविष्य में कोई देख रहा होगा, है ना? अब हम भविष्य में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं।
हाँ, अब हम साल 2144 के नियो सोल में है। ये भविष्य का कोरिया है जो पूरी तरह से कॉरपोरेशनों के कब्जे में है। एक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन कहानी। सोनमी 451 एक फैब्रिकेंट है।
फैब्रिकेंट मतलब
एक अनुवांशिक रूप से बनाई गई क्लोन जो एक फास्ट फूड रेस्टोरा में सर्वर का काम करती है। उसकी और उसके जैसी हजारों क्लोनों की जिंदगी सिर्फ 12 साल की गुलामी है, जिसके बाद उन्हें मुक्ति देने का वादा किया जाता है।
अच्छा।
एक दिन सोनमी में चेतना जागृत होती है और एक विद्रोही समूह उसे वहां से आजाद कराता है और उसे टिमोथी कैवेंडिश के जीवन पर बनी एक पुरानी मजेदार फिल्म दिखाई जाती है।
ये दिलचस्प है कि भविष्य की सबसे क्रांतिकारी कहानी का नायक एक क्लोन है। लेखक यहाँ मानवता के बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? सोनमी की कहानी तो इस उपन्यास का दिल लगती है।
बिल्कुल, ये उपन्यास का दार्शनिक और क्रांतिकारी हृदय है। यहाँ शोषण अपने चरम पर है। ये एक पूरी प्रजाति का शोषण है जिन्हें सिर्फ सामान की तरह बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। वो सीखती है कि जिस मुक्ति का वादा किया जाता है वो असल में उनकी हत्या करके उनके शरीर को अगली पीढ़ी के फैब्रिकेंट के लिए भोजन में बदलना है।
हे भगवान।
कहानी उस मोड़ पर रुकती है जब वो इस भयानक सच को दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार होती है।
तो यहाँ से कहानी अपने शिखर पर पहुँचती है, उपन्यास के बिल्कुल केंद्र में।
हाँ, और अब हम उपन्यास के केंद्र में है, 24वीं सदी का एक सर्वनाश के बाद का हवाई द्वीप। ये एकमात्र कहानी है जो पूरी सुनाई जाती है। सभ्यता नष्ट हो चुकी है। जैकरी एक शांतिप्रिय कबीले का सदस्य है जो डर और अंधविश्वास में जीता है। उसका कबीला सोनमी नाम की एक देवी की पूजा करता है।
सोनमी, वही सोनमी?
हाँ। एक दिन उसके द्वीप पर मेरिनेम नाम की एक महिला आती है जो तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता के आखिरी बचे हुए लोगों में से है। जैकरी अपने डर के बावजूद मेरिनेम की मदद करता है और उसे एक पवित्र पहाड़ क्लाउड एटलस पर ले जाता है
और वहीं पे सारे धागे आके जुड़ते हैं।
उससे पता चलता है कि जिस देवी सोनमी को वो पूछते हैं वो कोई देवी नहीं बल्कि सदियों पहले हुई एक इंसान थी।
बिल्कुल, उसे सोनमी का आखिरी रिकॉर्ड किया गया संदेश सुनने को मिलता है। जैकरी की कहानी मानवता के पतन और पुनरुत्थान की कहानी है।
ये उपन्यास का शीर्ष है और यहाँ से अब हम वापस उतरना शुरू करते हैं।
तो चलिए अब वापस लौटते हैं और देखते हैं कि इन अधूरी कहानियों का क्या हुआ। जब हम सोनमी की कहानी पर वापस आते हैं तो क्या पता चलता है?
हमें पता चलता है कि सोनमी का विद्रोह भी एक हद तक सरकार द्वारा रचा गया था, लेकिन वो अपनी गिरफ्तारी से पहले अपनी अंतिम गवाही अपना ओरिसन रिकॉर्ड करके उसे ब्रह्मांड में प्रसारित करने में कामयाब हो जाती है। वो जानती है कि उसे मार दिया जाएगा, लेकिन वो कहती है कि उसके विचार जिंदा रहेंगे
और उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि सदियों बाद जैकरी का कबीला उसी की पूजा कर रहा है। उसके शब्द एक मिथक बन गए। ठीक है, और टिमोथी कैवेंडिश, क्या वो भाग पाया?
हाँ, वो अपने साथियों के साथ उस नर्सिंग होम से एक बड़े ही नाटकीय और मजेदार अंदाज में भाग निकलता है। उसकी कहानी एक सुखद अंत पाती है।
और हमारी जासूस पत्रकार लुइसा रे,
वो भी उस हमले में बच जाती है और आखिरकार उस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके घोटाले का पर्दाफाश कर देती है। उसकी सच्चाई की लड़ाई जीत जाती है। विवियन आयर्स उसकी कला को चुराने की कोशिश करता है तो फ्रोबिशर उसे गोली मार देता है। फिर वो भागकर अपनी महान कृति क्लाउड एटलस सेक्सिट पूरी करता है। सिक्समिथ को अपने आखिरी खत लिखता है और फिर
आत्महत्या कर लेता है।
ओ,
ये एक दुखद अंत है, लेकिन इसमें भी वो अपनी कला पर अपना हक जताता है। वो अपनी रचना को किसी और के हाथों में जाने नहीं देता।
और आखिर में हम पहली कहानी पर लौटते हैं। एडम इविंग जो जहर से अपनी कैबिन में मर रहा है, उसका क्या होता है?
यहीं पर उपन्यास का चक्र पूरा होता है। उसे ऑटुआ नाम का एक मोरियोरी गुलाम बचाता है जिसकी मदद इविंग ने पहले की थी। एक अच्छा कर्म, एक दयालुता घूमकर वापस आती है और उसकी जान बचा लेती है।
वाह!
इस अनुभव से इविंग पूरी तरह बदल जाता है। वो अमेरिका लौटता है और फैसला करता है कि वो अपना जीवन दास्ता विरोधी आंदोलन को समर्पित कर देगा। और यहीं पर वो मशहूर संवाद आता है जब उसका ससुर उसके इस फैसले का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम्हारा ये प्रयास एक विशाल महासागर में सिर्फ एक बूंद जैसा होगा।
हाँ, और इविंग का जवाब इस पूरे उपन्यास का सार है, उसका निचोड़ है। वो कहता है, लेकिन कोई भी महासागर बूंदों के समूह के अलावा और क्या है?
Yet what is any ocean but a multitude of drops?
क्या कमाल की पंक्ति है! ये स्वीकार करती है कि दुनिया में अन्याय एक महासागर जितना विशाल है और एक अकेला इंसान उसके सामने बहुत छोटा महसूस कर सकता है। लेकिन
ये इस बात पर भी जोर देती है कि एक व्यक्ति का नैतिक साहस, उसकी दयालुता का एक छोटा सा काम, एक छोटी सी बूंद, चाहे कितनी भी मामूली लगे, मायने रखती है।
बिल्कुल, क्योंकि यही छोटी छोटी बूंदें मिलकर आखिरकार बदलाव का महासागर बनाती हैं। और यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश है जो सोनमी अपनी अंतिम गवाही में कहती है। हाँ, हमारा जीवन हमारा अपना नहीं है। गर्भ से कब्र तक हम दूसरों से बंधे हैं। अतीत और वर्तमान से और हर अपराध और हर दयालुता से हम अपने भविष्य को जन्म देते हैं। इविंग की एक बूंद ने फ्रोबिशर को प्रेरित किया। फ्रोबिशर की कला ने लुइजा को, और इसी तरह ये श्रृंखला सोनमी से होते हुए जैकरी तक पहुंची।
तो आखिर में क्लाउड एटलस सिर्फ कहानियों का एक संग्रह नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये कला और कहानियों की ताकत के बारे में है।
हाँ, एक डायरी, कुछ खत, संगीत का एक टुकड़ा, एक पांडुलिपि, एक फिल्म और आखिर में एक मिथक, यही वो चीजें हैं जो समय के थप्पड़ों को सहकर भी जिंदा रहती हैं और एक युग से दूसरे युग तक उम्मीद पहुंचाती हैं।
क्लाउड एटलस हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्मों की गूंज समय और स्थान से कहीं आगे तक जाती है,
और ये हमें सिखाता है कि इतिहास भले ही खुद को दोहराता हो, लेकिन हर पीढ़ी में आशा और प्रतिरोध की नई बूंदें भी हमेशा जन्म लेती हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।